ओम शांति। ओम का अर्थ भी आ उ मा, आचरण उच्चारण मनन। तो हम कुछ सोचते हैं, बोलते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन वो होना तो वही चाहिए जो मैंने सोचा था, लेकिन आज तीनों अलग अलग दिशाओं में दिखाई दे रहा होता है। सोचते कुछ हैं, बोल कुछ रहे होते हैं और कर्मणा कुछ और हो जाती है। फिर कहते हैं, आप मेरे भाव को समझो ना दीदी, हमारा ये भाव ही नहीं था, आपने तो शब्द को पकड़ लिया। और खुद ही फिर गलती को महसूस भी करने लग जाते हैं। तो और फिर कहते हैं, शांति भी जीवन से खत्म होती जा रही है। तो बाबा ने हम बच्चों को शांति के सागर में, हम आत्माओं को हमारा स्वधर्म याद दिला दिया, ओम का अर्थ भी समझा दिया कि भक्ति में तो आप ये सुनते थे, लेकिन बाप ने कहा है आचरण उच्चारण और मनन करना। जो सोचते हो, जो बोलते हो, वही आपके व्यवहार में, कर्मणा में दिखाई देना चाहिए। तो अब शांति मेरे जीवन में खत्म क्यों हो रही है? आत्मा का पाठ जब हम पक्का रखते हैं कि आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, शांति के सागर की संतान, शांति धाम से आई थी और मुझे विश्व शांति का कार्य जरूर करना है रोज, जैसे यहाँ पर भी हम अनुभव कर रहे हैं डीप साइलेंस का, तो वो शांति हमारे अंदर समा जाए। जिनकी भी हमने क्लासेस सुनी है, हरेक के मुख से बाबा, दादियां, हमारे बड़े वरिष्ठ दादा, वरिष्ठ दादियां, तो हम भी जब यहाँ से जाएं, तो शांति के सागर को अपने अंदर समा करके जाएं। कितने वर्ष हो गए हमारे वरिष्ठ को, हमारे पूर्वजों को ये इतनी साइलेंस के वातावरण को बनाने में, हम भी उनके साथ साथ हैं। हम छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं हो। मान लो हम लोग स्टेशन गए, ट्रेन का पता चला 2 घंटे लेट आ रही है, तो क्या करती है माताएं? नजारे तो हम लोग साक्षी होके देख रहे होते हैं कि बाबा ने कहा है कि बच्चे आपस में लेन देन करो, ज्ञान की अनुभवों की शेयरिंग करो, मोबाइल पे चलो लाइव चला लो, मधुबन में इस समय क्या चल रहा है, हम लोग बीच में से छोड़ के आए थे। हमारा मन और बुद्धि बाबा के ज्ञान, बाबा के योग में होना चाहिए। एयरपोर्ट पहुंचे, मौसम के कारण से 3 घंटा फ्लाइट लेट है, कोई बात नहीं बाबा, नॉलेज इज, बाबा कहते लाइट माइट एंड वर्च्यू, आपकी बुद्धि में तो ज्ञान है, आप अपने माइंड को एकदम शांत कर लेते हो, 3 बिंदियां आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी, फुल स्टॉप फटाफट लग जाता है, इसमें भी कुछ कल्याण होगा। गीता ज्ञान का सारी यही है, जो हुआ जो हो रहा है बहुत अच्छा, और जो आगे होगा और भी अच्छा होगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहनी चाहिए, हमारे मन में, जो सुबह की क्लास में भी पॉइंट्स चल रहे थे कि नोटों में आवाज नहीं होती, चिल्लर में होती है, खुले पैसों में होती है, और जो फाउंडेशन होते हैं, नींव के पत्थर बोला नहीं करते, उनमें शक्तियां समाई होती हैं। वो नीचे मिट्टी धूल में रहते हैं और सारे पेड़ को ताकत दे रहे होते हैं। सृष्टि के हम पूर्वज बैठे हैं, पूज्य आत्माएं बैठी हैं। सुना अभी कि 8 घंटे मेरी पूजा हो या 8 दिन में एक बार हो, हमें खुद संगम युग पर डिसाइड करना है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। फिर शांति के बारे में हमने सुबह सेशन में सुना कि मम्मा कहती थी कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझोगे तो मन में शांति बनी रहती है, पता नहीं कल उठना है कि नहीं उठना, विस्तार में मैं क्यों भटक रहा है मेरा मन, क्यों क्या कैसे, कौवा बुद्धि तो नहीं बन गई मैं, व्यर्थ संकल्पों में तो नहीं चली गई मैं। इसी प्रकार दीदी मनमोहिनी जी का भी सुना आपने, दीदी का स्लोगन पक्का हो गया है, पक्का। ऐसे रात को सोए सोए भी बोल दिया करो, जैसे अभी पूछूंगी ना सारे बता दोगे, ऐसे रात को सोए सोए भी बता दिया करो कि अब घर चलना। अब यहाँ से दिल्ली वापिस जा रहे हैं, क्या लेकर के जा रहे हैं, माइक भी ले जा रहे हैं, वीडियो कैमरा भी ले जा रहे हैं, पंखे ले जा रहे हैं। अब घर जाना है तो शांति अपने आप अंदर बनी रहती है कि बाबा आत्मा जब परम धाम से आई थी 7 क्वालिटी से भरपूर आई थी, याद होंगे सबको सातों गुण अच्छी तरह से। अब उसकी परसेंटेज को हमें और बढ़ाना है, मधुबन की इस भट्टी को स्मृति में पावरफुल रख करके, क्योंकि ये चांस इतनी जल्दी नहीं मिलती है। ये तो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसमें भी कोई, जिनका भाग्य खुल जाता है बाबा की वरदान भूमि पर बैठ के अपना समय संकल्प श्वास सफल कर रहे हैं। ये यादगार बन जाती है हमेशा के लिए कि मैं बाबा के घर रुका था, बाबा के घर में रुकी थी। रुकते तो हम और भी हैं, ORC में भी रुकते हैं, जैसे दीदी भी सुना रहे थे ना, लेकिन जो पहला स्थान ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, वहां पर हम लोग बैठे हैं और इसी हॉल में बाबा बैठ करके भोग लगा के खाना खा रहे होते थे, दीदी मनमोहिनी जी और इधर दादी प्रकाशमणि दोनों बैठे होते थे। तो हम कितने लकी हैं, ऐसी तपस्या भूमि पर हम तपस्या कर रहे हैं। तो अपने मन को बार बार हम शांति से दूर नहीं ले जाएं, इस समय सबसे कीमती चीज है शांति। ब्रेन हेमरेज क्यों हो रही है, डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, टेंशन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, एक्सीडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं, नेट कॉज निकल करके आएगा यही, उनके जीवन में शांति नहीं थी। और बाबा ने हमें स्वधर्म, स्वदेश, सुकर्म, पिता की पहचान सब बता दिया कि बच्चे आप हो ही शांति के सागर के बच्चे। बाबा पादरी का भी मिसाल देता है कि वो कैसे एक क्राइस्ट की याद में शांति से चक्कर लगा रहा होता है। तो हम अपनी शांति को बनाए रखेंगे, मन की शक्तियों को बनाए रखेंगे और ही उसकी परसेंटेज को बढ़ा करके यहाँ से बाहर जाएंगे। फिर दूसरी बात आती है हमारे सामने कि कई बार हम बहुत उल्टा सोचने लग जाते हैं, कहीं पर भी हो, चाहे मान लो हम घर में बैठे हैं, बच्चा लेट हो गया है आने में, चाहे दुकान से, चाहे स्कूल से, चाहे कॉलेज से, पॉजिटिव थॉट्स क्यों नहीं आ रहे मेरे मन में, पहले उल्टे संकल्प शुरू होते हैं। और हम लोग इतने हैबिचुअल होते जा रहे हैं, आदती बनते जा रहे हैं, जो रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं माना गया और हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं माना गया, हेल्थ पर भी उसका असर आता है। 70% बीमारियां, जब मेडिकल विंग की कॉन्फ्रेंस होती है ना उसमें बताते हैं, 70% बीमारियां मनुष्य की सोच के कारण से है। मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, अरे इतने साधन है आपके घर में, तो हर कमरे में देखो कितने बढ़िया साधन है, लेकिन आप साधना को भूल गए ना शायद। कोई लौकिक में भी देखो, कोई घर के बड़े बुजुर्ग, आप सबकी भी मैं एज देख रही हूँ, कोई घर के बड़े बैठे हो और छोटे छोटे खिलौने टेबल पर लेके खेल रहे हो, ये बाबा की मुरली के पॉइंट है, तो घर वाले हंसेंगे, कहेंगे पता नहीं पापा जी को क्या हो गया, दादाजी को क्या हो गया। छोटी छोटी बातों में जब हम मन को भारी कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में हम उलझ जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, उल्टा सोचना शुरू। नेगेटिव समझते हैं आप, सुबह फोटो सेशन हो रहा था ना, तो पहले जमाने में भी हम देखते थे नेगेटिव को धुलाई करने के लिए भेजते थे। तो मेरे को एक बार कहा बड़े भाई साहब जगदीश भाई ने, नेगेटिव क्या होता है, वो रील सी थी ऐसे गोल गोल सी, मैंने कहा इसको नेगेटिव बोलते हैं। कहते बाबा क्या कहता है? मैंने कहा मालूम नहीं। कहा इसको ऐसे ट्यूबलाइट में देखो, सारे भूत 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 दिखाई देंगे। समझ आ गया भूत काल? वो तो कैंसिल्ड हो गया चेक आपका, वो थोड़ी चलना है अभी चेक। प्रेजेंट गिफ्ट, प्रेजेंट में रहो ना, खुश रहो। तो ये दूसरी बात मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग इतने हैबिचुअल हो गए हैं, आदती हो गए हैं, जो रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं, हमारी हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं, हर समय नेगेटिव में चले जाना। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप डॉक्टर के पास गए, मान लो मैं ही डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर साहब जैसे ही सीजन चेंज होता है ना, मेरे को सर्दी जुकाम खांसी शुरू हो जाती है। हम लोग चार जने इकट्ठे रहते हैं, किसी को भी नहीं होती, मैं ही पकड़ में आ जाती हूँ, तो डॉक्टर क्या बोलेगा मेरे को? शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति, फिजिकल इम्यूनिटी पावर जो आप में होनी चाहिए वो कम है, बाकी में ठीक है। सेम यही बात स्पिरिचुअलिटी स्पष्ट कर रही है। ये तो फिजिकल बातें हैं, अब आप इस पर आ जाओ, छोटी सी आत्मा पर। स्पिरिचुअलिटी क्या कह रही है? चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, रिएक्ट कर बैठे, उल्टा बोल दिया। बाबा ने तो सिखाया हुआ एक चुप सो सुख, बच्चे बीती को चितवो नहीं, अभी आगे की सुध करो, मुझे आगे से क्या करना है। लेकिन फटाफट हम लोग पास्ट में उल्टी बातों में मन को बारी कर लेते, मानो स्पिरिचुअलिटी की जो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए, सिर्फ मैंने बाबा की मुरली सेंटर पे जाके पढ़ी सुनी, बाकी हर घंटे में बाबा कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, चलो बच्चे मोबाइल से गीत चला लो, कहीं भी हो, घर में सारे बैठे मैं नहीं चला सकती, लेकिन एक घंटे में एक मिनट दो मिनट मैं चुप रह करके बाबा को याद कर सकती हूँ। बाबा मेरी फोटो बना रहे, वीडियो बना, कितना अटेंशन होगा, वीडियो बन रही है। ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे जब ये बाबा भक्ति में था तो शिव के ऊपर लोटी चढ़ाता था और अब शिव जी मुझे नहला रहे हैं। बाबा हंसते थे कि बच्चे कर्म करो, याद में रह करके करो कि बाबा मेरी वीडियो बना रहे हैं। सुबह 4 बजे से 8 बजे का टाइम बाबा का है। क्या करते हम रोज सुबह 4 बजे से 8 बजे तक? ईमानदारी से अपने लौकिक में भी ध्यान से देखो, सेंटर का भी देखो ध्यान से, कर्म करो। हो सकता है आपको वॉशिंग भी करनी होती हो, किचन भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती हो सेंटर जाने से पहले, ताकि आते ही मैं सबको नाश्ता दे सकूं। ऐसे भाइयों को भी थोड़ी बहुत तैयारी करनी होती है, मधुबन में तो होती सुबह है सारे काम, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी सेट होता है सब चीजें। तो हम कर्म योगी बन करके जब कर्म करते हैं तो फिर हमारे में हल्कापन आने लग जाता है। आध्यात्मिकता को हम बढ़ाएं अपने अंदर, ट्रैफिक कंट्रोल को बढ़ाएं। हर घंटे में हमें बैठना है, हर घंटे में मुझे बाबा को देखना है, बाबा मेरी फोटो वीडियो बना रहे हैं। सुबह मैं सेशन में आपको बता रही थी कि जब मैंने सेंटर रहना शुरू किया था 82-83 की बात है, तो एक एक दिन सबका योग भट्टी का होता था, उस दिन किसी से बोलना नहीं होता था, और सुबह अमृत वेले से लेकर के 5:30 बजे के रिकॉर्ड तक हमें बाबा के रूम में बैठना होता था, जिसकी ड्यूटी है। आज इसकी भट्टी का दिन है, चाहे हमारे चक्रधारी दीदी, चाहे हमारे भाई सेंटर पे रहते, चाहे हमारी जो भी रशिया में सेवाएं कर रही हैं बहनें, सबका एक एक दिन फिक्स होता था। तो मैं जब यहाँ बैठती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है कि उस समय कोई मोबाइल नहीं थे हमारे हाथ, उस समय कोई टेप रिकॉर्डर नहीं थे सेंटरों पर, ग्रामोफोन होते थे बड़े बड़े, वो भी सिर्फ मुरली के क्लास के टाइम सुबह निकालते थे, फिर अलमारी में बंद करके रख देते थे। तो हम बाबा के रूम में कैसे बैठे होते थे? सिर्फ बाबा को देख रहे होते थे, सिर्फ बाबा को, और कोई लाल बत्ती भी नहीं जलाई होती थी सारा दिन, कि बिजली का बिल भी ना बढ़े। सनलाइट आ रही होती थी और एक अव्यक्त वाणी की किताब बाबा के पास रखी होती थी कि जब आपको लगे तो थोड़ा पढ़ लो, पर उतना ही पढ़ना जितना आपको हजम हो जाए। समझ रहे हैं बड़ों की ट्रेनिंग? जितना आपके जीवन में आ जाए, जितना आपको याद हो जाए कि हाँ बाबा हिमते बच्चे मददे बाप के ऊपर मैंने पढ़ा एक पेज, अब मैं सोच रही कि आवी मेरे में हिम्मत, मैं आश्रम पे रहूंगी, मैं कर पाऊंगी, मुझे घर से छुट्टी मिल जाएगी। मैं तो बिल्कुल ही नई नई थी, लेकिन वो एक योग भट्टियां हर हफ्ते होती थी, वो भट्टी का असर अभी तक हमारे दिल दिमाग में छाया हुआ है अभी तक, क्योंकि हम सिर्फ बाबा को देख रहे होते थे, ना इधर ना उधर, और ना कोई गीत के जमाने थे। सिर्फ अव्यक्त वाणी पढ़ी, जितनी देर पढ़ना हो, जितना मन करे आपका, आराम से बैठ के बाबा से बातें करो, बाबा मैं ज्ञान में बहुत लेट हो गई, बाबा मैंने मम्मा को भी इन आंखों से नहीं देखा था, बाबा को भी नहीं, बाबा मुझे लास्ट सो फास्ट जाना है, ऐसे हमें सिखाया जाता था। आप बाबा से मन की बातें करो, बाबा अब प्रतिज्ञा मैं कर रही हूँ आपका हाथ और साथ बाबा कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये मैं दूसरी पॉइंट आपको स्पष्ट कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी की। वो डॉक्टर तो हमें फिजिकल बीमारियों का बता रहा होता है कि आपकी जो पावर है ना, इम्यूनिटी पावर, वो कम हो गई है, लेकिन जब आध्यात्मिकता की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है तो हमारा मन सशक्त हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए कोई भी बात हमें इम्पॉसिबल, स्पेलिंग क्या है इम्पॉसिबल के, आई एम पॉसिबल, हमको लगता है सब हो जाएगा, बाबा साथ है ना, बाबा बैठा है ना। जैसे कहा कि क्षमा कर देना, माफ कर देना, ये भी आपकी समझो स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, आप मन को भारी नहीं कर रहे। बाप दादा ने कहा था डायमंड हॉल में कि आप बात को सोच सोच के भारी कर देते हो। तो बाबा के पास यहाँ रुमाल रखा हुआ था, तो बाबा ने एकदम रुमाल उठाया ऐसे, बात को छोड़ दो, बात को पकड़ो नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाया। तब डायमंड हॉल बना ही था 25 साल पहले, बाबा ने रुमाल का करके दिखाया, कभी भी बात को पकड़ो नहीं, बात समझदार है, वो आई है चली जाएगी, आप उसको सोच सोच के बड़ा नहीं करो। बाबा ने कहा वो दिवाली पर जलाते हो ना माचिस की तीली से, वो एकदम जलते जलते बड़ा हो जाता है। बच्चे कई बार ऐसा कर देते हैं। मन को कभी भारी नहीं करो, अपनी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते जाओ। माफ कर दो, जैसे अभी पिछली क्लास में सुना आपने, माफ कर दो, क्षमा भाव, क्षमा करना ये कोई छोटी बात नहीं समझो आप, बहुत बड़ा दिल चाहिए। और फिर बाबा ने इसी के ऊपर जब महावाक्य उच्चारण किए तो बाबा ने ऐसे हाथ किया, आप सब करना ऐसे, बाबा ने सारी सभा में कराया था कि बात गई सो गई, माफ किया छोड़ो ना इसको, क्या दिल पे लगा के बैठे हो। बाबा ने कहा था पीछे बाप बैठे ना, उस समय ये सीन सामने ले आना कि मैंने बाप के हवाले किया था कि बाबा ये प्रॉब्लम आ गई, ये दुख आ गया बाबा, ये घटना घटी, ये परिस्थिति आ गई, ये समस्या आ गई, सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। उस समय ये था बाबा का, बाबा प्रैक्टिकल करके दिखा रहे होते थे स्टेज पर। पुरानी दीदियां जो मेरे से भी पुरानी, इनको याद होगा बाबा ने ऐसे किया था, सब सभा से कराया था, 20,000 बैठे हुए थे, तब से पक्का कर लिया कि मन को हल्का, डबल लाइट भट्टी का नाम है ज्वालामुखी, हल्का रखना है मन को। तो ये दूसरी बात हम याद रखें, हमें स्पिरिचुअलिटी की पावर को बढ़ाना है, चाहे हम क्लासेस सुन रहे हैं, चाहे बाप दादा की आवाज सुन रहे हैं, हमारे हाथ में भी चलता फिरता टेलीविजन है, लेकिन मुझे अपनी शक्तियों को कम नहीं होने देना है, लीकेज नहीं होने देना है, मटके में छेद नहीं होने देना है, मुझे भरपूर रहना है, संपन्न बनकर सारे विश्व को साकाश देना है, जो आज भी पूर्वज कर रहे हैं। जब भी बड़ों के प्रति भोग लगता है आप ध्यान से संदेश सुनो। वो वतन से क्या भेज रहे हैं संदेश? साकाश शक्तियां प्रत्यक्षता। ऊपर भी वही ये सेवा हो रही है। जहां भी पुनर्जन्म में गए आत्मा संस्कार के अनुसार यही सेवाएं कर रही है। और हम इस समय मधुबन की धरनी पर बैठे हैं। तो बाबा कहते इस शक्तियों को बढ़ाओ। जिस पर एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बार परिवार में तीन बहुएं थी तो कहा गया घर की चाबियां किसको दी जाए, जिम्मेवारी किसको दी जाए। तो जो बड़ी जो सास थी उसने गेहूं के दाने मंगवाए और तीनों बहुओं को कहा कि एक साल के बाद हम आपसे ले लेंगे। बड़ी बहू ने सोचा अब इतनी एज में पता नहीं क्या हो गया इनको, जब कहेंगे तो मैं गोदाम में से निकाल के दे दूंगी। दूसरी ने भी कुछ ऐसे ही सोचा। एक ने तो फेंक दिए, एक ने कहा नहीं माँ जी ने दिए हैं, ट्रंक में पोटली बना के संभाल के रख दिए। छोटी बहू समझदार थी, उसने फिर उसको बीज के रूप में बो दिया। एक साल के बाद जब घर के बड़ों ने कहा वो गेहूं के दाने हमें वापस कीजिए, क्योंकि उनको तो डिसाइड करना था आगे का, तो बड़ी बहू ने फटाफट गोदाम में से निकाल के वो ताजे दाने गेहूं के लाके रख दिए। और बीज वाली ने जब पोटली निकाली तो अच्छी तरह से घुन लग चुका था, काले हो चुके थे। और जो छोटी वाली थी उसने कहा मुझे तो बैलगाड़ी चाहिए। संगम पर बाबा हमको ये सिखा रहे हैं, बच्चे आप राजा क्वालिटी हो, महाराजा क्वालिटी हो, आप साहूकार बनने जा रहे हो, आप प्रजा बनने जा रहे हो, अपना पद पद खुद फाइनल करो। अपने मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन समय शक्ति श्वास, बाबा ने 9 बातें कही थी, इसके अकॉर्डिंग अपना चार्ट लिखो। तन मन धन, मन वचन कर्म, समय श्वास शक्तियां मेरी किसके लिए यूज हो रही है, मेरे संकल्प किसके लिए चल रहे हैं। ट्रेन के लिए वो आ जाएगी अपने टाइम पर। अरे हमें क्या, पहले तो पता है 24 घंटे लगते थे मधुबन पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में 20 घंटे भी लगते थे। अभी थोड़ा शांति रखो, मेडिटेशन कर लो, कोई क्लास चला लो, चलो बाबा की आवाज सुन लो। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हम अपने मन और बुद्धि की एकाग्रता शक्तियां शांति को खत्म नहीं करें, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की पावर को कई गुणा करके गेहूं के दानों के रूप से हम उसको बढ़ाएंगे। हम खुद भी राइट हैंड बन करके बाबा की सेवाओं को, जैसे गोवर्धन पर्वत का मिसाल है, सबकी उंगली के सहयोग से उठा, ऐसे हम औरों को भी बाबा के राइट हैंड बनाएंगे। इसी हॉल में जब दादी जी क्लास करा रहे थे तब ये स्टेज नहीं थी, दादी प्रकाश मणि जी ने कहा था हेडक्वार्टर में सब बैठे हो, पर दादी अपने को हेड समझती नहीं है, नहीं तो मेरे को तो हेडेक होता रहेगा, मैं तो बाबा का हैंड हूँ, राइट हैंड हूँ, राइट हैंड, ऐसे करती थी दादी। तो वो दादियों की बातें तो दिल पर होती हैं कि हमें भी ऐसे बाबा का राइट हैंड सपूत बच्चा, गोवर्धन पर्वत में अपनी अंगुली देने वाला, उसमें 3 कोट है, ध्यान रखना, तन मन धन मन वचन कर्म समेश्वर शक्तियां, हमें वही तो सहयोग देना है बाबा जो कह रहे। फिर तीसरी बात हमारे सामने आती है कि जो हम देखते हैं आज, पहले जो मनोवैज्ञानिक होते थे 50 साल पहले, अगर हम पीछे जाते हैं 45 साल पहले, मुश्किल से एक मिलता था। केमिस्ट की दुकानें देखो, डॉक्टर्स की रेयर होती थी। और अभी 15 साल 10 साल में हम लोग देखते हैं कि ये हो क्या रहा है समाज में, बुराइयां बढ़ती जा रही, बीमारियां बढ़ती जा रही, तामसिकता बढ़ती जा रही। तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे आश्रम पर भी मैंने देखा कोई आई फैमिली, इतनी रिच फैमिली, रिचेस्ट फैमिली, लेकिन जब मैंने उनकी बेटी को देखा तो मैंने कहा इसका माइंड हिला हुआ है, तो डिप्रेशन के कारण से। तो इतने डॉक्टर्स के पास जाना, डॉक्टर घर वाले उसकी सुनते ही नहीं, अब डॉक्टर्स के पास भी इसको लेके गए। डॉक्टर्स ने 5 मिनट के 1000 रुपए इससे लिए और सिर्फ यही कहा, मैं दवाई नहीं दे सकता, आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम पे जाके मेडिटेशन सीखो। तो मैंने इसको थोड़ा समझाया, लेकिन आंखें नहीं एकाग्र हो रही, गर्दन ही नहीं एकाग्र हो रही उसकी, क्लाइमेक्स जिसको कहती हूँ ओवर हो चुका है उसका डिप्रेशन। बाबा की वो हमने थोड़ा सा टीवी चला के वो भी दिखाया कि ये है आत्मा का ज्ञान, ये है राजयोग, ताकि इसका माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए। बीमारियां, ये तो मैं मिसाल छोटा सा दे रही हूँ, बीमारियां तो कई गुना बढ़ चुकी हैं। तो हम बाबा के बच्चे खुद भी स्वस्थ स्व की स्थिति में स्थित, हम औरों को भी सत्य बाप से जोड़ने वाले, हम हलचल में आने वाले नहीं। हमारा पुण्य का खाता भरपूर है तो हम अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं। हमें 3 बिंदियों का पाठ सदा पक्का रहता है। लेकिन अगर हम कहें दीदी मेरे पास टाइम ही नहीं होता, दीदी मोबाइल से मैंने मुरली सुन ली पढ़ ली, तो बाबा ने कहा था बाप के घर आना अर्थात पुण्य का खाता जमा करना। कोरोना काल तो अभी चला है, ये तो बाबा के महावाक्य पहले से हैं कि कई बच्चे कहते हैं हम तो घर में मुरली ले आते हैं पढ़ लेते हैं, तो बाबा ने कहा था उनका पुण्य का खाता जमा नहीं होता जितना होना चाहिए। बाप के घर आना माना पुण्य का खाता उन बच्चों का जमा हो जाता है। तो ये मैं आपके सामने तीसरी बात रखने जा रही हूँ कि हमें अपना पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है। हमें 1 घंटा कम से कम अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। दीदी टाइम ही नहीं होता, पूरी दिनचर्या सुना देते हैं। मैंने कहा ये एक्सक्यूज भगवान नहीं सुनते, चाहे वो बच्चों के कारण है, ट्यूशन के कारण है, चाहे आपकी जॉब के कारण है, भगवान ये बातें नहीं सुनते। वो कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं कर सकोगी, पूरे चक्र में जो करना है अभी ही करना। तो हमें श्री बाबा ने जो ज्ञान दिया कि 1 घंटा निकालो अपने लिए, 1 घंटा। कहानी भी उस पर सुनाते हैं हमारे बड़े कि जब एक सेठ ने लकड़ी काटने वाले को रखा तो वो 10 किलो लकड़ी काटता था, फिर 1 हफ्ते के बाद अब वो 8 किलो 7 किलो तक ही काट पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो धार नहीं लगवाता था, कहता था मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो 1 घंटा बाबा कहते सेंटर पर जरूर आना चाहिए। और फिर मधुबन के लिए बाबा ने कहा था हर तीसरे चौथे मास में रिफ्रेश होने मधुबन आ जाया करो। कितनी बड़ी बड़ी बातें बाबा ने समझाई है। अब जो करे बेड़ा तो पार हो जाएगा ना, तर जाएगा वो तो जल्दी जल्दी तर जाएगा। अमेरिका का भी मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी कि मैं वहां पर भी देख रही थी आश्रम वालों ने चर्च खरीदी, कितनी बड़ी चर्च थी, जैसे ये पूरा हॉल है ऐसे इतना ही हॉल है, ऊपर भी बेसमेंट भी बाहर भी इतना बड़ा। और 10 भाई बहन सुबह बैठ के 6:30 बजे मुरली की क्लास होती थी और 7 बजे मैं देखती थी गीत चलता था ट्रैफिक कंट्रोल का, 7:10 तक सभी जॉब पे चले जाते थे, मैं सेंटर पे मुझे छोड़ जाते थे। मैं तो 1 मास के लिए गई हुई थी किसी और शहर में, मोहिनी दीदी न्यूयॉर्क में थी या कोई और शहर था। फिर मैं देखती थी शाम को सारे ही आकर के योग कर रहे हैं 10 के 10, प्लस 5 अमेरिकन भी मुरली सुनने आते थे। तो मैं पूछती थी जो हमारे इंडियंस होते थे गुजराती भी चंडीगढ़ के भी, मैंने कहा आप लोग सारा दिन जॉब करते हो, फिर खाना भी अपने हाथ से बनाना खाना, फिर सेंटर इतनी दूर आ जाना, बाय कार ही होता है। तो कहा दीदी बाबा ने कहा है याद का चार्ट 8 घंटा होना चाहिए, जो बाबा फॉरेनर्स की बात जब करते हैं ना कि बाप ने कहा और बच्चे ने किया, वो तीव्र पुरुषार्थी है। तो मैं प्रैक्टिकल में वहां 5 सिटीज में देख रही थी कि हम इंडियंस क्या करते हैं और हमारे विदेश के भाई बहन कि हमें शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। इतने बढ़िया बढ़िया गीत बाबा के चलाते थे, और उसके बाद मैं 7:30 के रिकॉर्ड के बाद फिर इंग्लिश में उनको अमेरिकन को मुरली सुना रही होती थी, तो मैं देखती थी कि उनका योग का चार्ट कैसे बढ़ता है, बाबा कैसे इनकी महिमा करता है, ये सच्चाई से सब चार्ट बाबा को बताते। ऐसे रशिया में भी मैं देखती थी कि जब बाबा ने उनकी महिमा की कि बाबा को बच्चे सच्चाई से सब चाट देते हैं। जब यहाँ पांडव भवन में आते थे तब हमारा ज्ञान सरोवर नहीं था, तो तब दादी गुलजार बैठे होते थे उनके साथ, तो रशियन हमारी बहनें कह रही होती थी, दादी मेरे को लोभ विकार आ गया। दादी ने कहा वो कैसे आ गया? कहा मैंने 2 ब्रेड खानी थी, मैंने 3 खा ली थी। कल आप लिखोगे ये? मानो एक ने लिखा कि मुझे आलस से आया, छठा विकार ने मुझे पकड़ा, मैं सेंटर पर मुरली के आधी मुरली हो चुकी थी, मैं लेट पहुंची, मुझे आलस आ गया, मैं सुबह लेट उठी थी। आप लिखोगे क्या? ऐसे उनके लेटर हम पढ़ के दादी को सुना रहे होते थे उनके सामने, क्योंकि वो इतना हिंदी नहीं बोल पाती थी, तब तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाती थी। तो बाबा जो विदेशियों की महिमा करते हैं, हम गुणग्राही बन करके उन सब की विशेषताएं अपने जीवन में लाते जाए ना। कल पॉइंट्स चल रहे थे ना सत्यता के ऊपर, सच तो बैठो नच, पॉइंट्स तो सब बहुत अच्छे होते हैं ना, बात तो सारी प्रैक्टिकल की है ना। स्कूल में भी जब प्रैक्टिकल होते थे ना पूरे नंबर मिलते थे, प्रैक्टिकल के पूरे नंबर होते हैं। तो डॉक्टर भी कहता है कि हेल्दी डाइट खाओ, एक्सरसाइज करो, गहरी नींद हो, तो देखना आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब इन तीनों बातों को आप स्पिरिचुअलिटी में ले लीजिए। आज का विचार, आज मुरली का सार क्या था, ताजा भोजन क्या था, हेल्दी डाइट क्या थी आज, वो मैंने खाई आज। फिर बाबा ने कहा बच्चे प्रैक्टिस करो, आत्मभिमानी बनो, जिससे भी बात करो ये मेरा मीठा भाई है, ये मेरी मीठी बहन है, ये कल्प पहले वाली, ये देवकुल की आत्मा है, बाबा की बच्ची है, ये बाबा का बच्चा है, ये प्रैक्टिस हो रही है, देखो एक्सरसाइज हो रही है। और फिर डीप साइलेंस, जिसको हम कहते हैं रेस्ट मेडिटेशन, मेडिटेशन एज मेडिसिन का काम करता है ना, तो वो हो गया फिजिकल, ये होता है सब स्पिरिट आत्मा के लिए। और लास्ट पॉइंट एक जो मैं अभी बैठे बैठे सोच रही थी कि जापान, हर चीज पे लिखा होता है मेड इन जापान, जापान की कार्य कुशलता, उनकी एकाग्रता साइंटिफिक हो चुकी है, प्रूफ हो चुका है, ये साबित हो चुका है कि उनकी दिमाग की जो शक्ति है उसमें एकाग्रता है, भटकी हुई नहीं रहती है। कारण देखा गया कि जो वहां पर कंपनीज हैं उन्होंने बेसमेंट में मेडिटेशन रूम बनाए हुए हैं, मेडिटेशन हॉल बनाए हुए हैं, जितने भी आते हैं वर्कर्स कह लो, मैनेजर कह लो, सभी स्टाफ 15 मिनट आकर के सब मेडिटेशन कर रहे होते हैं। घर की बातें भूल जाओ, शांति 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 में बैठ जाते 15 मिनट, फिर शाम को जब उनकी छुट्टी होती है फिर 15 मिनट, फिर मेडिटेशन हॉल में देखो ग्रुप बैठने शुरू हो गए हैं। प्रैक्टिकल बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फिर उनकी जो धैर्यता बढ़ती चली गई, गंभीरता बढ़ती चली गई, समझ बढ़ती चली गई कि हमें परिवार वालों के साथ कैसे चलना है, बाहर वालों के साथ कैसे चलना है, इसलिए वो चीजें उनकी बढ़ती चली गई, क्योंकि मेडिटेशन में बैठे, मन को शांत किया, घर की बातें घर में, ऑफिस की बातें ऑफिस में, इसलिए उनकी एकाग्रता बढ़ती चली गई, ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब हम मुरली सुनने सेंटर पे जाते हैं, मैं सेंटर पे देख रही होती हूँ योग के टाइम कितने बैठे हुए थे, मुरली के टाइम कितने बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा था कि बच्चे ये ज्ञान अमृत है, ये जो हम बाबा की याद में अगर बैठेंगे नहीं, हम सीधा मुरली सुनने बैठ गए, तो जैसे होता है ना हम साबुन तो लगा रहे हैं पानी से धोना तो भूल ही गए, बाहर निकल आए। सब कहेंगे मुंह धो के आओ ना, क्या साबुन लगा के बाहर आ गए हो, भगवान मेरे साथ है। और बाहर आकर के क्या बोला तूने, अच्छा साबुन तो ठीक लगा के आ गया, ये धोना भूल गया ना, योग नहीं लगाया। प्रैक्टिकल बातें बाबा कहते बच्चे ज्ञान भी सुनो और साथ साथ ये अमृत गंगा जल है, ये आपके मन को स्वच्छ रखेगा। हर बात बाबा से शेयर करो, हर बात बाबा को बोलो। जैसे एक छोटा सा मिसाल हम लोग देते हैं कि एक फादर ने अपने तीन बेटों को कहा कि ये लो 100 रुपए, तीनों को 100-100 रुपए दिए और अपना कमरा भर दो, अब घर की जिम्मेवारी उसको मिलने जा रही है। बड़े बेटे ने कूड़ा करकट उठाया, 100 रुपए में क्या आएगा, कमरा भर दिया। दूसरे ने कॉटन खरीद ली, रुई खरीद ली। तीसरे ने एक कोने में अगरबत्ती जला दी। तो हम संगम युग पर क्या कर रहे हैं, बस वो हमें याद रखना है, वो हमें सीखते जाना है कि हमारी स्मृति पावरफुल होगी तो हमारी स्थिति भी पावरफुल अपने आप बनती जाएगी। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसे बाबा ने, आपको शायद पता हो, तब इसको आचार संहिता बोला गया था। आचार संहिता में यहाँ पर लिखा गया था, ओम शांति भवन में पढ़ के सुनाया गया था 83 में, कि हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी सुबह 4 से 8 बजे का टाइम बाबा को देंगे और शाम के भी 4 से 8 बजे का टाइम जो सेंटर पर दोबारा से आकर योग करें, कुछ सेवा होती है तो ये भी उनसे प्रतिज्ञा कराई जा रही थी। तो मैं यहाँ पर बैठी तो मुझे अपने बचपन की बातें याद आ रही थी कि इसी हॉल में हम लोग ऐसे राउंड में चेयर्स लगाते थे, सारे जोन इंचार्ज बैठते थे, स्लिप लगाई जाती थी, भोपाल ईस्टर्न जोन, ये नेपाल, हर एक दिल्ली, सब दीदियों के नाम, इधर दादियों के नाम होते थे, मीटिंग्स होती थी तब इस हॉल में। और जब ओम शांति भवन बन रहा था तब दादियां हमारी मुरली के बाद ईंटे उठा रहे होते थे, तसला उठा रहे होते थे, तब हम 19 साल की थी मैं, तो हम दादियों की मदद कर रहे होते थे। ओम शांति भवन 81 की बात है। तो यहाँ बैठे बैठे मेरे को सारा सीन सामने आ रहा था कि क्या हम वो इतने पक्के बीकेस बैठे हैं यहाँ पर बाबा की फाउंडेशन भूमि पर, मम्मा बाबा की धरनी पर, दादियों की तपस्या भूमि पर, जिन्होंने अपने हाथों से ईंटें पकड़ाई हो। आप सोचो, बाबा का रथ जिसको बाप दादा ने कहा, इतने घंटों घंटों बाप दादा को अपने में समा के रखती है, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। और हम क्या करते हैं रोज सारा दिन, क्या कर रहे हैं? तो बाप समान दाता भी बनना है, औरों को भी बनाना है। ट्रेन का भी सुना हमने कि हमें श्रीमत और साथ में दृढ़ता से खुद भी चलते जाना है, औरों को भी ट्रेन में लेकर जाना है। ट्रेन का इंजन भी स्पष्ट हुआ, ट्रेन का पीछे का भी स्पोर्ट आपको स्पष्ट किया गया। उड़ना है, बट्टी माना उड़ना है, बट्टी माना तपना है। सोनार की बट्टी की भी बात चली, ईंटों की बट्टे की भी बात चली, लोहार की भी बट्टी की बात चली। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, अपने लिए तालियां बजा दो। बहुत अच्छा कि बाबा आपके अमूल्य रतन मधुबन पांडव भवन में बट्टी करके भरपूर होकर के जा रहे हैं। तो अभी हम लोग सब क्या करेंगे, धन्यवाद किसको करेंगे? सबसे पहले बाबा को। बाबा का निमंत्रण मिला, बाबा हमको लेकर के आया है अपने घर में। दादियों का, हमारे जो पूर्वज जिनका आशीर्वाद हम सबके साथ आज भी है, और फिर जो निमित है हमारी बड़ी दीदियां शशि दीदी, शीलू दीदी का भी थैंक्स। सब बोलो थैंक यू, थैंक यू दीदी। दीदियां सब सुन रही हैं, सबकी आवाज जा रही है। फिर हम किसका थैंक्स करेंगे, किसका करेंगे? लाइट एंड साउंड वालों को। आप देखो जो टॉपिक होता था क्लास का, बट्टी का, वो उसके अकॉर्डिंग गीत चला रहे हैं। और फिर जैसे ही लाइट गई, ऐसे जनरेटर वाले भाई, उनका भी थैंक्स, सब हमारे मधुबन निवासी सुन रहे हैं, जो इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन से मधुबन की धरनी को पावरफुल करके, बाबा ने कहा था यहाँ इतनी पावर है पूरे वर्ल्ड को ये खींच रही है, पांडव भवन मधुबन सबको खींच रहा है। तो उन भाइयों का भी थैंक्स जो गुप्त रूप से हैं, सबके सामने नहीं आते लेकिन गुप्त रूप से उनका पूरा सपोर्ट है हमारे साथ, हमारे वो बैकबोन है जो इतने पावरफुल एटमोस्फियर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। फिर आ जाएंगे हम चाय टोली पर, पानी भी भाग है, दूध भी भाग है, भोजन भी भाग है, सब्जी भी भाग है, कहाँ से आ रही है सब्जियां, कहाँ से आ रहा है दूध, सबका दिल से धन्यवाद। सब बोले थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। टोली डिपार्टमेंट है, सुबह मैं सफाई वाली बहनों से बात कर रही थी, कब से यहाँ सफाई कर रही हो, देखो तुम भगवान के घर का ध्यान रख रही हो, भगवान पूरे सृष्टि चक्र में तुम्हारा ध्यान रखेगा, ये भगवान का वायदा है। तो वो उनको इतनी गहरी बातें समझ नहीं आती ना, फिर उनको बिठा के थोड़ा बहुत रोज सुनाती हूँ कि देखो कितने आप लोग आते हो तो कैसे आपका पुण्य जमा हो रहा है, दीदियों की दुआएं आप सबको मिल रही है। तो मैं अभी सब यहाँ बैठे बैठे सोच रही थी बाबा को देख करके कि जब हम भट्टी करते थे तो हम क्या करते थे, सारा दिन बाबा के कमरे में बैठे होते थे, खाना खाने गए डाइनिंग में और बस चुप, बस मुस्कुरा देते थे, फिर खाना खा के सब अपने रूम में ऐसे जा रहे होते थे बाय करके और हम बाबा के रूम में, और फिर योग करते रहते थे और 5:30 बजे के रिकॉर्ड पे फिर चुप करके अपने रूम में आ जाते थे। बोलने का मन ही नहीं करता था, वो ऐसे होता था, इतनी साइलेंस चली गई अंदर। तो हमें इस भट्टी को यादगार भट्टी जरूर बनाना है, ठीक है। हाँ दीदी का देखो, जो दीदियां गाइड बन के सबको लेकर आती हैं, यात्रा कराती हैं महान तीर्थ की, इसी के लिए तो गायन बनाना, सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो दीदियों का भी भाग्य बन जाता है और आप सब भाई बहनों का भी। बाबा को थैंक्स करें, ओम शांति। I just got.